Jo aie isse tappu bhumi par bhala sabhi ka huye re shuddh dharam sab ke man jage शुद्ध धर्म सबके मन जागे मुक्त दुखों से हुए रे सबका मंगल मंगल रे
थोड़े से शब्द हिंदी भाषा में इसलिए बोल दूं कि देखता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हिंदी भाषी तो हैं पर अंग्रेजी नहीं समझ पाए, तो थोड़ा सा समय आपका लेता हुआ क्या भी प्रश्न है, हिंदी भाषी भी समझें क्या भी प्रश्न है, जो शिविर चलेगा वो दोनों भाषाओं में चलेगा तो वहाँ समझेंगे ही, लेकिन फिर भी थोड़े में एक रूपरेखा समझें। विशेषेन पश्यते इति विपश्यन, विशेष प्रकार से देखता है अपने भीतर सच्चाई को तो भी पश्यना है। यथाभूत जैसा है वैसा है, उस पर अपनी ओर से कुछ थोपता नहीं, अपनी कोई मान्यता थोपता नहीं। हमारी ये दार्शनिक मान्यता है इसको थोप दें, हमारी परंपरा तो ये कहती है इसे थोप दें, तो नहीं होगा, विपश्यना नहीं करेंगे। किसी सत्य का निर्माण नहीं करता कि ऐसा सत्य मैं अपने आप निर्माण कर लूं और फिर देखूं उसे, तो विपश्यना नहीं होगी। अपने आप जो कुछ होता है, कुदरतन जो कुछ होता है, बस उसे ही साक्षी भाव से देखता है। भारत के संतों में यह परंपरा रही, यद्यपि विपश्यना नाम समाप्त हो गया इस देश से। भारत का एक महान संत कहता है कि था पिया न जाई ओ कितन होई आपू आप निरंजन सोई, था पिया न जाई कितन होई। इम्पोज नहीं कर सकते तुम कुछ, जहां इम्पोज करने लगे कि समझ लो थाप रहे हो, सच्चाई को नहीं देख रहे, अपनी मान्यता का आरोपण कर रहे हो, तुम विपश्यना नहीं कर रहे। जो विपश्यना का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा। कीता न जाए, क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ क्रिएट करने लगे तो नकली बात आर्टिफिशियल बात हो जाएगी, सच्चाई नहीं होगी। अपने आप जो प्रकट होता है, आंख बंद करके बैठे हैं, कुछ नहीं करते, वाणी से बोलते नहीं, शरीर से कुछ करते नहीं, आंख बंद करके बैठे हैं, मुंह बंद करके बैठे हैं, अब देखें क्या होता है, अपने आप क्या होता है, आपो आप क्या होता है। अरे आपो आप सांस आता है, देख सांस आ रहा है सांस जा रहा है, बस यहीं से काम शुरू कर दो, लगो देखने इस सांस को, आ रहा है जा रहा है, सांस की कसरत नहीं, जरा सी भी कसरत नहीं, सांस पर नियंत्रण नहीं, जरा सा भी नियंत्रण नहीं, प्राणायाम बिल्कुल नहीं, प्राणायाम के बिल्कुल विपरीत। प्राणायाम में सांस पर नियंत्रण किया जाता है, यहां आपो आप निरंजन सोई, अपने आप सांस आता है। अरे गहरा आता है तो हम जान रहे हैं भाई गहरा है, छिछला आता है तो जान रहे हैं छिछला है, बाई नासिका से गुजरता है तो अच्छा बाई नासिका से गुजरता है, दाहिनी से गुजरता है तो अच्छा दाहिनी से गुजरता है, दोनों से गुजरता है तो दोनों से गुजरता है, और कहाँ छूता है, नासिका के भीतर कहीं छूता है कि बाहर कहीं छूता है, इतनी सी दूरी में कहाँ छू रहा है उसको जान रहे हैं, बस जान रहे हैं, केवल केवल जानने का काम और करना कुछ नहीं, अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहे, जान रहे हैं। यूं जानते जानते 3 दिन नहीं बीतेंगे, क्योंकि यथार्थ को जान रहे हैं ना, इसके साथ कुछ जोड़ नहीं रहे, कुछ थोप नहीं रहे इस पर, तो देखेंगे कि सांस को जानते जानते शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को जानने लगे। तीन दिन भी नहीं बीतने पाएगा कि नासिका के इर्द गिर्द कुछ खटपट हो रहा है, कभी कोई खुजलाहट सी होती है, कभी कोई गुदगुदाहट सी होती है, कभी कोई सुरसुराहट सी होती है, कभी कोई झंझनाहट सी होती है, कभी कोई गर्मी सी होती है, अरे सारे शरीर में ऐसे होते रहता है। कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया तो जानते नहीं क्या हो रहा था, अब जानने लगेंगे, तीन ही दिन में जानने लगेंगे। फिर चौथे दिन से दसवें दिन तक यही काम करना है, शरीर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह की संवेदना हो रही है। क्यों भाई, इसको जानने से क्या मिलेगा, इस सांस को जानने से क्या मिलेगा, इस संवेदना को जानने से क्या मिलेगा। सांस केवल शरीर की ही प्रक्रिया नहीं है, इसका हमारे मन से गहरा संबंध है। मन में जैसे ही विकार जागेगा सांस अपनी स्वाभाविकता खो देगा। तो इसलिए हमको मन के विकारों तक पहुंचना है तो हम शुद्ध सांस का सहारा लेंगे, उसके सहारे 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 अपने मन की गहराइयों तक पहुंच जाएंगे, इसलिए सांस का सहारा लिया। शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इनका हमारे मन से और मन के विकारों से बहुत गहरा संबंध है। मानस का एक हिस्सा जिसे पश्चिम के मनोवैज्ञानिक अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अर्ध कॉन्शियस माइंड कहते हैं, हाफ कॉन्शियस माइंड कहते हैं, भारत के संतों ने, भारत के वैज्ञानिकों ने ये शब्द नहीं इस्तेमाल किए, क्योंकि वो अनकॉन्शियस नहीं है, प्रतिक्षण कॉन्शियस है, पर अपने ही बावलेपन में कॉन्शियस है। कॉन्शियस तो है ही, किस बात में कॉन्शियस है, किस बात में सजग है वो, शरीर में क्या हो रहा है, कैसी संवेदना चल रही है, प्रतिक्षण जागरूक है उसके प्रति। मानस का वो हिस्सा जिसको अनकॉन्शियस कहते हो वो कॉन्शियस है, शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के प्रति रात दिन कॉन्शियस है। गहरी नींद में सोए हो, रात को खूब गहरी नींद में सोए हो, कौन सोया है, कॉन्शियस माइंड सो गया गहरी नींद में। ये अनकॉन्शियस तो सजग है, सतत सजग है शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के प्रति। गहरी नींद में सोए हो और एक मच्छर ने काट लिया तो गहरी नींद में सोए हो ना, उस अनकॉन्शियस को पता लग गया कि कुछ हमको अप्रिय अनुभूति हुई, संवेदना अप्रिय हुई, तो झट प्रतिक्रिया करता है, हाथ से मच्छर को उड़ाता है या मार देता है, और जहां मच्छर ने काटा वहां जरा खुजलाता है, सहलाता है, ताकि अप्रिय संवेदना दूर हो। तो प्रतिक्रिया करता है, अप्रिय को दूर करने की प्रतिक्रिया करता है। लेटा है किसी एक करवट से, चित्त ही लेटा है, और लेटे लेटे गहरी नींद में भी शरीर का वजन जो पड़ा तो कहीं भारी सा लगने लगा, कहीं पीड़ा से लगने लगी। चेतन चित्त को जरा भी नहीं पता, पर उस अचेतन को पता है, वो अचेतन नहीं है पर हम कहते हैं उसे अचेतन, उसे पता है कि अब भारीपन आया, ये अप्रिय संवेदना नहीं अच्छी लगती, अरे करवट बदल, झट करवट बदल ली, और करवट बदले बदले फिर भारीपन आया तो कहता फिर करवट बदल, अरे सारी रात न जाने कितनी बार करवट बदलते रहे, ये कौन बदलता रहा। ये मानस का वो हिस्सा जो सदा हमारी संवेदनाओं के साथ जुड़ा रहता है, और जुड़ा ही नहीं रहता, प्रतिक्रिया करते रहता है। प्रिय लगती है तो राग की प्रतिक्रिया करता है, माने लोभ की, प्राप्त करने की, बनाए रखने की प्रतिक्रिया करता है। अप्रिय लगता है तो द्वेष की प्रतिक्रिया करता है, उसे दूर करने की प्रतिक्रिया करता है। सारे जीवन भर उसका स्वभाव हो गया, ऐसा उसका स्वभाव हो गया। रात की बात नहीं है, दिन में भी तो यही होता है। अगर विपश्य साधक नहीं हूं तो क्या होगा, बैठा हूं, बोल रहा हूं, तो जिसको चेतन चित्त कहते हैं वो तो बोलने में लगा है, लोगों के चेहरे देखने में लगा है। अच्छा मैं बोलता हूं तो लोगों के चेहरे पर क्या असर होता है, इसी में लगा है। लेकिन ये अचेतन चित्त, उसको इन सारी बातों से कोई लेन देन नहीं, वो तो इस बात में लगा है कि शरीर में संवेदना कैसी हो रही है। तो देर तक बैठा हुआ शरीर, उसका भार, कहीं जरा सा दबाव आया, उसे नहीं अच्छा लगा, पीड़ा शुरू हुई, नहीं अच्छा लगा, तो यूं कर लेता है, थोड़ा सा यूं कर लेता है, थोड़ा सा यूं मचकता है। देखो किसी को 15 मिनट तक कितनी बार मचका, उस बेचारे को पता नहीं मैं क्यों मचक रहा हूं। अरे मचक रहा है तेरा अनकॉन्शियस माइंड, जो प्रतिक्षण शरीर पर होने संवेदनाओं के साथ जुड़ा हुआ है और प्रतिक्रिया कर रहा है। इसका स्वभाव जब तक नहीं बदलोगे तो जड़ें नहीं सुधर पाई ना। पेड़ को ऊपर ऊपर से 1000 सुधारते चले जाओ, अरे ये भूमि के नीचे जो जड़ें हैं अगर उनमें कीड़ा लगा है तो तुम्हारा पेड़ स्वस्थ होने वाला नहीं। तो जिसको अचेतन कहते हो, अनकॉन्शियस माइंड कहते हो, उसमें कीड़े लगे हैं, राग के द्वेष के, प्रभावित करते ही रहेंगे सारे के सारे मानस को। और सारे का सारा मानस राग रंजित रहेगा, द्वेष दूषित रहेगा, मोह विमूढ़ित रहेगा, क्योंकि जड़ें इस प्रकार की हैं। वो जड़ें जब तक नहीं सुधरेंगी तब तक काम नहीं बनेगा। बहुत तरह की साधनाएं होती हैं जिनमें हम अपने कॉन्शियस माइंड को सुधार लेते हैं। कोई ऐसा आलंबन चुन लिया, कोई ऐसा रंग, कोई ऐसा रूप, कोई ऐसी आकृति, या कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा मंत्र, और उसी के सहारे सहारे इस कॉन्शियस माइंड को हमने समाहित कर दिया, एकाग्र कर दिया, और समझा कि ये सुधर गया। सुधरा भी, लेकिन अनकॉन्शियस वैसा का वैसा रहा। वहां तक हम पहुंचे नहीं। वहां तक पहुंचने के लिए इस मुक्त पुरुष ने रास्ता ढूंढा कि संवेदनाओं को देखो। शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को देखना शुरू कर दोगे तो अपने अचेतन चित्त को देखना शुरू कर दिया, और देखोगे कि वो कितनी प्रतिक्रिया करता है। खुजली आती हाथ जाता है जल्दी खुजलाने, फिर तो विपश्यना करेंगे तो अच्छा खुजली आई है, देखते हैं भाई तुझे भी, तू कितनी देर रहती है। अरे अनंत काल तक कोई खुजली नहीं रहती, आई है बढ़ते बढ़ते तेज होगी तेज होगी तेज होगी, समाप्त हो जाएगी। बहुत दुखद से दुखद संवेदना आई, देखते 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 समाप्त हो जाएगी। अरे इसी प्रकार सुखद से सुखद संवेदना आई, वो भी देखते 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 समाप्त हो जाएगी। अरे अनित्य है भाई, नश्वर है भाई, परिवर्तनशील है भाई, ये सारे का सारा शरीर प्रपंच, ये सारे का सारा चित्त प्रपंच, और इन दोनों की मिली जुली ये जीवन धारा जो संवेदनाओं के रूप में प्रकट हो रही है, अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। अब किसी के उपदेश की बात नहीं, अपनी अनुभूति से देखता है नश्वर है, भंगुर है, अनित्य है, तो प्रतिक्रिया करनी बंद कर देता है। तो कौन बंद कर देता है? वो ऊपर ऊपर का चेतन चित्त नहीं, ये अंधा अचेतन चित्त, जिसका स्वभाव हो गया, अंधा स्वभाव हो गया, ब्लाइंड रिएक्शन करने का स्वभाव हो गया, वो पलट रहा है। 10 दिन में ही इतना पलट जाएगा कि एकदम जीवन मुक्त हो जाओगे, ये आशा लेके शिविर में नहीं बैठना चाहिए। 10 दिन में आरंभ हो जाएगा, सही दिशा में सही कदम उठ जाएगा। नन्ना सा कदम उठेगा, एक ही कदम उठेगा, बहुत लंबा रास्ता है, जीवन भर का काम है। कौन जाने थोड़ा 2-4-5 जीवन और भी लग जाएं, लंबा काम है, पर आरंभ हो जाएगा, और इसी जीवन में उसका लाभ आना शुरू हो जाएगा। मरने के बाद कोई लाभ है तो समझना विपश्यना नहीं है। विपश्यना हो तो यही अकाली को इसी जीवन में लाभ आना ही चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही आए, जितना काम करते हैं उतना ही आए, पर अगर अभी परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं तो फिर धोखा है। फिर किसी के कहने में आ गए, किसी अंधभक्ति में आ गए, अंधविश्वास में आ गए। सचमुच वैज्ञानिक बात है, ऐसा ऐसा हो तो ये परिणाम आएगा, ये परिणाम नहीं चाहिए तो ऐसा ऐसा न होने दे, न होने दे, पर परिणाम नहीं आता है ना, ये अपनी अनुभूति से देखना होगा, तब देखेंगे सचमुच सुधार हो रहा है, और सुधार होने ही लगेगा। तो आज जो ये बावलापन केवल भारत में ही नहीं, भारत के पड़ोसी देशों में भी, और केवल भारत के पड़ोसी देशों में ही नहीं, सारे संसार में धर्म के नाम पर जो बावलापन चल पड़ा, संप्रदाय और धर्म पर्यायवाची हो गए, कितना बड़ा दुर्भाग्य हो गया। धर्म जो सार्वजनिक होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है, जो सारे संसार के प्राणियों पर, सजीव निर्जीव सब पर हुकूमत करता है, उसको हमने एक संप्रदाय से बांध दिया। धर्म को हिंदू धर्म कहने लगे, धर्म को बौद्ध धर्म कहने लगे, धर्म को जैन धर्म कहने लगे, सिख धर्म कहने लगे। अरे क्या हो गया, सारे कुओं में भांग पड़ गई, एक जैसी भांग पड़ गई। धर्म इन सब से अलग भी हो सकता है, और अलग है ही, ये बात ही भूल गया सारा देश। आज जब धर्म शब्द का इस्तेमाल करता हूं, शिविरों में करूं या शिविरों के बाहर करूं, तो कान खड़े होते हैं सुनने वाले के। पहला प्रश्न मन में ये जागता है, ये कौन से धर्म की बात करेगा, ये बौद्ध धर्म की कि जैन धर्म की कि हिंदू धर्म की कि मुस्लिम धर्म की कि ईसाई धर्म की। अरे भाई, धर्म हिंदू हो ही नहीं सकता, धर्म जैन हो ही नहीं सकता, ईसाई हो ही नहीं सकता, बौद्ध हो ही नहीं सकता। धर्म धर्म है, कुदरत का कानून है, रित है, विधान है। आग पर हाथ रखें तो हाथ जलेगा, क्योंकि आग का धर्म है जलना और जलाना, ये उसका धर्म है। इसमें हिंदू बने की क्या बात है, इसमें मुस्लिम बने की क्या बात है, बौद्ध बने की क्या बात है, वो नियम है, कुदरत है, धर्म नियामता है। ठीक इसी प्रकार अपने भीतर राग पैदा करूंगा, द्वेष पैदा करूंगा, अहंकार पैदा करूंगा, भय पैदा करूंगा, वासना पैदा करूंगा, जलूंगा ही, व्याकुल होऊंगा ही। हिंदू हो तो व्याकुल हो जाऊंगा, मुसलमान हो तो व्याकुल हो जाऊंगा, जैन हो तो व्याकुल हो जाऊंगा, दुनिया की कोई शक्ति मुझे बचाने वाली नहीं। और इन विकारों से छुटकारा पालूं तो व्याकुलता से छुटकारा पालूंगा। कुदरत का कानून है भाई, इसमें हिंदूपना क्या है, इसमें जैनपना क्या है, इसमें बौद्धपना क्या है। तो जब कभी विपश्यना में आए तो ये समझ करके आए कि हम किसी एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में दीक्षित होने नहीं आ रहे। दीक्षित तो जरूर हो रहे हैं, पर दीक्षित किस में हो रहे हैं? धर्म में दीक्षित हो रहे हैं, शुद्ध धर्म में दीक्षित हो रहे हैं। कुदरत के कानून को समझ करके धर्म का जीवन जिएंगे, जो कुदरत का कानून जैसे चाहता है उसी के मुताबिक चलेंगे। हुकुम रजाई चलना और नानक लिखिया नाल, ये हुकुम रजाई हमारे भीतर लिखी हुई, किस तरह से कुदरत क्या चाहती है, उसकी क्या मंशा है। कुदरत की ये मंशा है कि आग पर हाथ रखोगे तो जलाएगी, मत रखो हाथ आग पर, नहीं जलना है तो। राग और द्वेष और विकार जगाओगे तो जलेंगे, मत रखो, मत ऐसा पैदा करो राग और द्वेष, अपने आप बच जाओगे उससे। भाई ये हुकुम रजाई है, ये कुदरत का कानून है, और ये किसी पुस्तकों में ढूंढे नहीं मिलता। नानक लिखिया नाड़, अपने भीतर ही लिखा है। जिसने अपने भीतर इस कुदरत के कानून को पढ़ लिया, अनुभव द्वारा जान लिया, वो ठीक मुक्ति के रास्ते पर चलता चला जाएगा। फिर भले अपने आप को हिंदू कहता फिरे, मुसलमान कहता फिरे, बौद्ध कहता फिरे, ईसाई कहता फिरे, अरे क्या फर्क पड़ गया इन नामों में। नाम रख लिया सदा सुख और जन्म का दुखियारा, क्या मिल गया सदा सुख नाम से। नाम रख लिया नयन सुख और जन्म का अंधा, क्या मिल गया इस नाम से। तो इन नामों में कुछ नहीं पड़ा। फिर हम नहीं कहते कि लोग अपना नाम इस तरह का बंद कर दें कि हिंदू हिंदू नहीं कहेगा, अपने आप को बौद्ध बौद्ध नहीं कहेगा, जैन जैन नहीं कहेगा, पर चिपकाव जो हो गया हिंदू को, हिंदू में कितना चिपकाव। मैं हिंदू हूं इसलिए बड़ा महान हूं, मैं सिख हूं इसलिए बड़ा महान हूं, मैं जैन हूं इसलिए बड़ा महान हूं, मैं बौद्ध हूं इसलिए बड़ा महान हूं, ये बावलापन उतर जाएगा। मैं धर्मवान हूं या नहीं, मेरे जीवन में शील सदाचार उतरा कि नहीं, मेरे जीवन में मेरे चित्त की मलकियत मेरे हाथ में आई कि नहीं, चित्त का मालिक बना कि नहीं, मेरा चित्त निर्मल हुआ कि नहीं और निर्मल होकर के सद्गुणों से भरा कि नहीं। बस ये धर्म, सार्वजनिक धर्म, न हिंदू न बौद्ध न जैन न सिख, सबका धर्म। ये बात विपश्चित साधक को अनुभव से मालूम होने लगेगी तो ये बावलापन जिसमें कि सारा भारत डूबा हुआ, जिसमें कि पड़ोसी देश डूबे हुए, जिसमें कि सारा विश्व डूबा हुआ, बाहर निकलने का एक रास्ता है भाई। कुछ चमत्कार तो होगा नहीं, पर जितने जितने लोग इस रास्ते चलेंगे, बिल्कुल अंधकार में थोड़े से दीपक भी जले तो उतना उतना तो प्रकाश होगा, और फिर दीपक से दीपक, दीपक से दीपक जलते हुए सारे विश्व में प्रकाश होगा और सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा, सबकी स्वस्थ मुक्ति होगी। विपश्यना में इसलिए शामिल होना है, कोई कर्म कांड पूरा करने के लिए नहीं, किसी संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए नहीं। हम स्वयं अपने विकारों से कैसे मुक्त हों, स्वयं अपने दुखों से कैसे मुक्त हों और अन्य लोगों को भी दुखों से मुक्त होने में कैसे सहायक हो जाए, कैसे सहायक हो जाए। इस धर्म भूमि पर जो जो आए हैं वो सब अपने दुखों से मुक्त हों, वो सब अपने विकारों से मुक्त हों, और यही नहीं सारे विश्व के दुखियारे लोग, चाहे जिस देश के हों, चाहे जिस संप्रदाय के हों, चाहे जिस बोली भाषा के हों, चाहे जिस रंग रूप के हों, सारे दुखियारे लोग अपने अपने दुखों के बाहर आए। भारत की यह अनमोल संपदा, अनमोल प्राचीन आध्यात्मिक संपदा फिर जागे, इस धर्म भूमि से जागे और सारे विश्व में फैले, सारे मनुष्यों का कल्याण हो, सारे प्राणियों का कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सर्व